आज है 5 मई, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं दिन भर और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ में पंडाल गिरने से 6 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में छठे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न। पूर्वी मिदनापुर और कूच बिहार की 25 सीटों के लिए हुआ मतदान।
ममता बनर्जी के लिए सत्ता में टिके रहना बहुत ही मुश्किल साबित होगा, इस बार पब्लिक मूड उनके खिलाफ है।
जेएनयू में छात्रों को दी गई सजा के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। वाइस चांसलर ने कहा, भूख हड़ताल बंद होने पर ही बातचीत।
स्ट्रांग अपील किया, पहले आप हंगर स्ट्राइक जो है इसको आप बंद कीजिए, बंद करने के बाद हम साथ बैठ के हम बात करेंगे।
होंगी आपकी चिट्ठियां और अन्य खबरें भी, लेकिन सबसे पहले सुनिए विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ के दौरान पंडाल गिरने से 6 लोग मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच ये हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि 5 लोग तंबू गिरने से मारे गए, जबकि 1 व्यक्ति की मौत बिजली गिरने से हुई। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी के प्रमुख अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील हार गए हैं। 72 वर्षीय मोतीर रहमान निजामी को यह सजा 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान हुए युद्ध अपराधों के सिलसिले में सुनाई गई थी। उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावत तोगलू ने पुष्टि की है कि वो अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। इस महीने सत्ताधारी AKP पार्टी के अधिवेशन में वो दोबारा प्रधानमंत्री पद पाने का प्रयास नहीं करेंगे। दावत तोगलू ने कहा है कि उन्होंने न कभी राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान की आलोचना की है और न ही करेंगे। हालांकि ऐसी रिपोर्टें हैं कि दावत तोगलू देश में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था लाने की एर्दोगान की योजना से सहमत नहीं हैं। आम लोग इस फैसले से हैरान नहीं हैं। बेशक ये एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम है, लेकिन इसकी संभावना पहले से थी। स्पष्ट है कि उनके बीच मतभेद हैं। राष्ट्रपति चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली आए, ताकि वो अपनी राह में मौजूद सभी बाधाओं से छुटकारा पा सके। ये थे अंकारा की एक आम निवासी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पिछले 1 साल के दौरान दुनिया भर में विभिन्न संकटों के दौरान 1,67,000 लोग मारे गए हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ नाम की संस्था की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 2/3 लोग सीरिया में जारी संघर्ष में मारे गए। 2014 के मुकाबले पिछले साल वैश्विक संकटों में मारे गए लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अफगानिस्तान में हुई मौतों में इजाफा हुआ है, जहाँ पिछले साल लगभग 15,000 लोग मारे गए। अफ्रीकी देश कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक रिहायशी इमारत गिरने के 6 दिन बाद मलबे से एक जीवित महिला मिली है। भारी बारिश के बीच पिछले दिनों ये इमारत गिर गई थी। इस हादसे में अब तक 33 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 80 लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। सऊदी अरब से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि सुरक्षा बल मक्का के पास इस्लामिक स्टेट की एक संदिग्ध इकाई से निपटने में कामयाब रहे हैं और अब इसे खत्म कर दिया गया है। इस कार्रवाई में कम से कम 1 संदिग्ध चरमपंथी के मारे जाने की खबर है। और इराकी प्रधानमंत्री हैदर अलाबीदी ने उस सैन्य यूनिट के कमांडर को बर्खास्त कर दिया है, जिस पर बगदाद के बेहद सुरक्षा वाले ग्रीन जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। BBC समाचार।
स्वागत है आपका दिनभर कार्यक्रम में, मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अभी खबर आ रही है कि उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान मौसम खराब होने और आंधी की वजह से पंडाल गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। ताजा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी शुरह नियाजी के पास। शुरह, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए, आज शाम में करीब 4 से 4:30 बजे के दरमियान जो तेज आंधी और बारिश जो उज्जैन में शुरू, उसके चलते अभी जो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कंफर्म किया है कि 6 मौतें हुई हैं, 5 जो हैं साधु संत हैं, बताया जा रहा है कि जो टेंट और पंडाल जो था उसमें दबके मरे हैं, और 1 महिला की मौत जो हुई है वो करंट लगने से हुई है।
जी, लगता है हमारा संपर्क शुरह से कट गया। जैसे ही हम दोबारा संपर्क होगा, हम उनके पास फिर वापस लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज छठे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले गए। आज के चुनाव पूर्वी मिदनापुर और कूच बिहार जिले में हुए, जहां 25 सीटों पर 170 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। आज के चुनाव में करीब 10,000 वैसे मतदाताओं ने भी वोट डाला जो पिछले साल ही भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद इनक्लेव्स के भारत में शामिल किए जाने के बाद मतदाता बने हैं। आज की वोटिंग के बारे में और जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने कोलकाता में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शुभीर भौमिक से बात की।
आज तकरीबन जो चुनाव पूर्वी मिदनापुर और कूच बिहार के इलाकों में आए, इसका तात्पर्य एक तो ये है कि कूच बिहार के जो एनक्लेव्स है, जो कि हाल ही में बांग्लादेश के साथ जिसका एक परमानेंट समाधान हुआ है, वो एनक्लेव्स के लोग जो नए भारतीय नागरिक बने हैं और जिसको बहुत समय तक जिन लोगों को नागरिकत्व तो नहीं मिला था, ये लोग इस बार पहले बार वोट दे रहे हैं, तो उनके लिए ये काफी सिग्निफिकेंट रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कूच बिहार एक ऐसा इलाका है जहाँ कुछ हद तक एक अलग कूच बिहार का आंदोलन भी काफी दिनों से चला है, अभी उतना पकड़ उसका नहीं है, तो उसका वो भी एक फैक्टर है। बंगाल का जो मूल राजनीति है तृणमूल और उसके खिलाफ अभी कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस, तो इसके बाहर जो एक वो आंदोलन इस तरह कह रहे हैं, जैसे दार्जिलिंग में गोरखा लोग अलग एक आवाज भूमि की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, और कुछ बिहार में भी उस तरह का एक आंदोलन रहा है, और वहाँ कौन सा मूल राजनीतिक दल किस तरह से उन इश्यू को लेकर खेलता है उसके ऊपर ही चुनाव में उनका क्या नतीजा होगा वो निर्भर करता है।
शुभीर, चुनाव संपन्न हो गए हैं 6 चरण के, क्या क्या रुख नजर आ रहा है? ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किल होगी सत्ता में बने रहना, और जो दूसरे समीकरण है वो किस तरह से प्रभावशाली दिख रहे हैं?
ममता बनर्जी के लिए सत्ता में टिके रहना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। इस बार पब्लिक मूड उनके खिलाफ है और उसका वजह ये नॉन परफॉर्मेंस कि ये सरकार जो रहा है ये बिल्कुल ही बेहुदा रहा सरकार रहा है। जहां तक उद्योग लाने का सवाल है, बंगाल में इन्वेस्टमेंट लाने का सवाल है, इसमें पूरी तरह से नाकाम रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जहां तक सवाल है नाकाम रहा है। और साहब एक चीज अमरीश आपको बताओ, बंगालियों को सारा देश में बंगालियों का बहुत कुछ गड़बड़ है ये तो हम सुनते रहे हैं कि साहब वहाँ यूनियन होता है, वहाँ गड़बड़ होता है, वहाँ पॉलिटिकल वायलेंस, पर बंगाली चोर है ये ममता बनर्जी ने तमाम भारतवर्ष के सामने अब साबित कर दिया कि बंगाली चोर भी है। क्योंकि ये नारद कांड जो हुआ, उनके जो 11 लोग बड़े राजनीतिक एमपी भी हैं, पॉलिटिकल दूसरे लोग भी हैं, खुलेआम पैसा लेके पकड़े गए, तो इससे ये साबित हो गया है कि करप्शन बंगाल में फैल चुका है। तो ये सब और मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बट ये इस बार ये इतना जरूर कहूंगा कि पब्लिक मूड उनके खिलाफ था।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शुभीर भौमिक, जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी के लिए इस बार जीत की राह आसान नहीं लग रही।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
जेएनयू विश्वविद्यालय में आज छात्रों के निश्चितकालीन भूख हड़ताल का 8वां दिन है। इन छात्रों की मांग ये है कि 9 फरवरी के विवादास्पद नारों के मामले पर प्रशासन ने जो कार्रवाई की थी उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। एक तरफ जहां एबीवीपी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है, वाम दलों से जुड़े छात्र संगठनों ने अपनी भूख हड़ताल को जारी रखा है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से 4 छात्र अपनी भूख हड़ताल वापस ले चुके हैं। छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की हालत बिगड़ने के बाद आज उन्हें हेल्थ सेंटर में भर्ती करना पड़ा। भूख हड़ताल कर रही एक छात्रा श्वेता राज ने कन्हैया की हालत के बारे में कहा,
कल से उनकी तबीयत खराब थी और आज उनकी तबीयत थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गई।
उधर बीबीसी संवाददाता विनीत खरे से बातचीत में जेएनयू वाइस चांसलर प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने दोहराया कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जो व्यक्ति की जिंदगी को नुकसान पहुंचाए उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए और वो गैर कानूनी भी है।
कल आपकी तरफ से एक अपील जारी की गई स्टूडेंट्स कम्युनिटी की, इसमें आपने बोला है कि ये हंगर स्ट्राइक एक अनलॉफुल एक्टिविटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मींस अडॉप्ट करना चाहिए। सर, जिस देश में जहां स्वतंत्रता संग्राम में आमरण अनशन हुए वहां पर कहना कि हंगर स्ट्राइक एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये कितना सही है? मतलब महात्मा गांधी ने किया, इतने सारे पूरा स्वतंत्रता संग्राम पूरा भरा हुआ है ऐसे एग्जाम्पल से, उसमें ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मींस अडॉप्ट करें और अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये
लॉ में भी लॉ में
कोई वायलेंस नहीं हुआ अभी तक कैंपस में।
लॉ में ये है कि indefinite hunger strike, which will affect even the life of the person, right, is not something to be encouraged, right? So therefore, it becomes unlawful. ये हम अपील किया स्टूडेंट्स को इनका हालत देखने के बाद, इनका हालत धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहे हैं, उसीलिए हम इनको स्ट्रांग अपील किया, पहले आप हंगर स्ट्राइक जो है इसको आप बंद कीजिए, बंद करने के बाद हम साथ बैठ के हम बात करेंगे, बात करके आपका कंसर्न्स क्या है हमारा सामने रख दीजिए, हमारा तरफ से हम ओपन हैं, यही सिर्फ यही बताया हम इनको
आपसे। लेकिन प्रोटेस्ट आदमी कैसे करे? आप जब कहते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये सही है क्या? मतलब हंगर स्ट्राइक कैसे अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकती है सर? कैसे फिर आप अपनी बात रखेंगे, फिर आप प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? फिर आप
देख लीजिए, प्रोटेस्ट इफ यू लीव आउट दिस हंगर स्ट्राइक, आप आया होगा 10 दिन के पहले, 1 महीने के पहले, हर एक दिन एक प्रोटेस्ट है, हर एक दिन बातचीत होता है। दूसरा, अलग अलग वेज आर देयर इन ऑर्डर टू कन्वे योर मैसेज, लेकिन हंगर स्ट्राइक करके क्यों हमको हम डिस्ट्रॉय करना है, ये अच्छा नहीं है। देख लीजिए, यही बात मैं स्टूडेंट्स को ही बताया।
प्रोफेसर साहब,
ये है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा भी, पेरेंट्स ने इतना इनका होता है, हमारा बच्चा काम करके पढ़ के सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए इनका इच्छा रहते हैं, तो वो भी हम रेस्पेक्ट करना है।
सॉल्यूशन क्या है फिर? मतलब ये जो स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, आज 8वां दिन है, स्टूडेंट्स का बीपी गिर रहा है, किस शुगर लेवल कम हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है? मतलब वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, आपका कहना है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी।
सॉल्यूशन निकलेगा ओनली हम बैठ के बात करें। बात कब कर सकते हैं? आपका सिचुएशन अच्छा होना चाहिए, खाइए, खाके हमारे सामने बैठ के
आप बात कीजिए। पर्सनल टच एक आपका होता, जो कि स्टूडेंट्स का एलिगेशन है कि भाई पर्सनल टच, आप जाते बच्चों से मिलते कि भाई ये है, यू शुड रिजॉल्व, एक पर्सनल टच मिसिंग है आपकी तरफ से, ये कहना कि ये कि आप आइए बातचीत करिए, ये थोड़ा
हाँ। देख लीजिए, JNU में द हाइएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, मेरा रेक्टर्स को मैं रिक्वेस्ट किया हर एक दिन इनसे बात करके, इनके मन में क्या है, इनका क्या बोलना चाहते हैं, वो डिस्कस करने के लिए मैं इनको रिक्वेस्ट किया। हर एक दिन इन्होंने स्टूडेंट्स से कांटेक्ट में है। कल भी हम पूरा स्टूडेंट्स को इनवाइट करके पूरा डिस्कस किया,
हल नहीं निकला,
पूरा डिस्कस किया। ऐसा नहीं है कि हम इनके बारे में कंसर्न नहीं है, हम बातचीत तो कर रहे हैं।
जब आप अपॉइंट हुए थे सर, तो मैं एक आपका मैं गूगल सर्च कर रहा था, एक इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी थी आपको लेकर, जिसमें आपने कहा है कि आपके आपसे पूछा गया इनफैक्ट कि विज्ञान भारती एक कोई RSS का विंग है, आपके उनसे संबंध रहे? उन्होंने बोला हाँ संबंध रहे। आपने मना किया कि हमारा एसोसिएशन नहीं है विज्ञान भारती से, लेकिन आपने कहा कि ये संस्था अच्छा काम कर रही है, और मैंने IIT दिल्ली का कोई फंक्शन हुआ था, आपने अटेंड किया है। क्या RSS की सोच से आप एग्री करते हैं, उनके नज़दीक हैं, और उनके जो वैदिक साइंस और उनके अपने अलग सोच रही है, उससे आप कितने एग्री पे?
पहले मैं विज्ञान भारती के बारे में बोलने दीजिए, विज्ञान भारती से मेरे को कोई संबंध नहीं, लेकिन IIT दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, इसमें 2-3 हज़ार बच्चों ने आया, इनका प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किया, और ये पूरा हमारा मेरा ऑफिस, मेरा डिपार्टमेंट के सामने हुआ। तो हम 3-4 लोग प्रोफेसर, हम उधर जाके बच्चों से बात करके इनको इंस्पायर करने के लिए हम गए हैं। मैं सिर्फ एन एकेडमिशियन हूँ, और पूरा मेरा लाइफ में मेरा लाइफ स्टूडेंट्स लाइफ से इंटरवीन है। स्टूडेंट्स को टीच करना, रिसर्च करना, इनको मेंटरिंग करना, और इनको अच्छी सिटीजन्स को बनना, सो दैट they will contribute to the progress of this country. So my ideology is to work for this country.
लेकिन उनकी जो उनकी सोच है, आप उनके कहीं नजदीक अपनी अपनी सोच को पाते हैं? क्वेश्चन ये कहीं
देख लीजिए, ये मेरा भावना है जो हमारा poor people के लिए,
अखंड भारत या वैदिक साइंस को लेकर उनको उनकी जो सोच है,
ए पुअर पीपल के लिए हम काम करना है, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, और हमारा कंट्री को आगे लेना है।
ये थे JNU के VCM जगदेश कुमार। इस बातचीत का दूसरा हिस्सा आप कल के नमस्कार भारत में सुन सकते हैं।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
मुंबई की एक अदालत ने 5 साल पहले अंधेरी इलाके में हुए कीनन और रुबेन हत्याकांड में चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। 20 अक्टूबर 2011 की रात हुई इस घटना में दोनों दोस्त अपनी महिला दोस्तों के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध कर रहे थे। पूरा ब्यौरा सुनिए अश्विन अघोर से।
20 अक्टूबर 2011 को मुंबई के पश्चिम उपनगर अंधेरी के अंबोली इलाके में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के चार आरोपियों को मुंबई जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में कीनन सैंटोस तथा रूबेन फर्नांडिस यह दो युवक मारे गए थे। कीनन तथा रूबेन अपने मित्रों के साथ 20 अक्टूबर 2011 को अंबोली स्थित एक होटल में रात का खाना खाने गए थे। उनके साथ उनकी 3 सहेलियां भी थी। जब सभी दोस्त खाने के बाद नजदीकी पान की दुकान पर गए तब वहां आरोपी जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुग्रास और दीपक पिसवाल भी आए और कीनन के सहेलियों के साथ बदतमीजी करने लगे। कीनन ने इसका विरोध करते हुए उन्हें वहां से जाने को कहा, जिस पर आरोपी चले तो गए लेकिन जाते जाते कीनन को जान से मारने की धमकी दे गए। कीनन और उसके दोस्तों ने उस धमकी को गंभीरता से नहीं लिया लेकिन चारों आरोपी कुछ ही देर में अपने अन्य 20 दोस्तों के साथ लाठियां, क्रिकेट स्टंप्स लेकर वहां पहुंच गए। पास ही खड़े नारियल पानी के गाड़ी से उन्होंने 2 बड़े चाकू उठाकर कीनन पर हमला बोल दिया। सबने मिलकर उसे जमीन पर पटका और कीनन के सीने पर बैठकर उस पर चाकू से अंधाधुंध वार किए। कीनन की मदद के लिए रूबेन फर्नांडिस आए और हमलावरों से भिड़ गए। हमले में उन्हें भी काफी गंभीर चोटें आई थी। कीनन के अन्य दोस्तों ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती हमलावर अपना काम करके जा चुके थे। दोस्तों ने कीनन तथा रूबेन को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जहां कीनन को मृत घोषित कर दिया गया और रूबेन को आईसीयू में भर्ती किया गया। 10 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। कीनन के दोस्तों का कहना था कि जब वे लोग कीनन तथा रूबेन पर हमला हो रहा था तब होटल के वेटर तथा अन्य लोग सिर्फ देख रहे थे, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। यहां तक कि पुलिस भी काफ़ी देर से मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 21 युवकों को गिरफ्तार किया था जिसमें से जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुग्रास और दीपक पिसवल पर हत्या का मामला दर्ज किया, बाकियों पर दंगे फैलाने का मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया जिस पर गुरुवार सुबह फैसला आया जिसके मुताबिक चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
भारत से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान के एबटाबाद में 16 साल की एक लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। अमरीन नाम की इस लड़की ने कथित रूप से अपनी एक सहेली की घर से भागने में मदद की थी। खबर की पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू के संवाददाता हारून रशीद से।
ये वाकया है पिछले माह की 28 तारीख का, जब पुलिस के मुताबिक वहाँ पर जो मकामी एक गांव है मोकल, वहाँ के जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने मिलके एक फैसला किया कि एक लड़की थी वहाँ नवी जमात की अंबरीन, उसने कोई 2 हफ्ते पहले उससे अपनी एक सहेली की घर से भागने में मदद की थी और फिर वो लड़की ने जाकर अदालत में अपनी पसंद की शादी कर ली थी। तो इस पर इस गांव के ये लोग काफी नाराज थे और गुस्से में थे, तो उन्होंने अंबरीन को सबक सिखाने के लिए बकौल पुलिस के से पहले दुपट्टा गले में बांधकर उसे फांसी दी, हलाक किया और फिर बाद में गाड़ी में बिठाकर उस गाड़ी को आग लगा दी जिससे वो उसकी लाश जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई। इस उनका कहना था कि कुछ मकामी लोगों ने बताया कि गाड़ी को और उसकी लाश को आग लगाने का शायद उनका मकसद ये था कि ये गाड़ी जो है धमाके से फट जाएगी और इस तरह इसकी लाश का किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज हुई है और वहां पर जो विटनेसेस हैं उन्होंने बताया कि ये वाकया कोई रात 2-2:30 बजे के करीब पेश आया और उस वक्त एक आई विटनेस का कहना था कि उन्होंने एक खातून की खुदारा बचाओ बचाओ की आवाजें भी सुनी जिस पर वो उन्होंने खिड़की खोल कर देखी तो एक गाड़ी को आग लगी हुई थी। तो अभी ये आई विटनेस ने जो कहा है इससे ये नहीं अंदाजा हो रहा कि क्या ये जो बचाओ बचाओ की आवाजें थी उसी लड़की की थी या किसी और की थी, और अगर तो उसी लड़की की थी तो फिर तो ऐसा लगता है कि शायद उसे जिंदा जलाया गया। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि नहीं, उसे पहले गला दबा कर मारा गया है और उसके बाद आग लगाई गई है।
हारून साहब, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में? किसी को हिरासत में लेकर कोई पूछताछ हो रही है? मामले में पुलिस क्या कर रही है?
जी, इस वाकये में अब तक कोई 16 अफराद नामजद हुए हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं कि वो सब इसमें पुलिस को शक है कि मुलव्वस हैं। उनमें से 13 अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनको उनका रिमांड भी ले लिया है 14 दिन का अदालत से, और इनमें लड़की की माँ भी शामिल है और उस इलाके का एक मकामी नाजिम भी शामिल है परवेज जिसका नाम है, जो कि बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि वो इस सारी कार्रवाई में पेश था। तो इस तरह पुलिस तो ये दावा कर रही है कि इस केस को उन्होंने हल कर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये देखना अभी भी बाकी है कि वो लड़की जिंदा जलाई गई थी या पहले मारी गई और उसके बाद जलाया गया उसको।
ये थे बीबीसी उर्दू के संवाददाता हारून रशीद, और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, आपकी पातियों का। चलते हैं राजेश जोशी और तृप्ति श्रीवास्तव के पास।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ, आपको ताजुब होगा, एक नई साथी है हमारी जिनका नाम है तृप्ति श्रीवास्तव। वैसे उतनी नई भी नहीं है तृप्ति, आपके बहुत सारे डिस्पैचेस हमारे श्रोताओं ने सुने होंगे आपकी आवाज में, तो अपनी आवाज अब सुना ही दीजिए।
बिल्कुल, और आपके साथ ये कार्यक्रम पहली बार पेश कर रही हूँ, इसलिए इस कार्यक्रम के लिए नई हूँ
जी।
लेकिन चिट्ठियों के लिहाज से देखा जाए तो आज हमारे पास कई चिट्ठियां आई हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, कई शिकायतें हैं और कई सुझाव हैं और कई तारीफें भी।
मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में दो पोस्टकार्ड हैं, कहाँ से हैं ये?
बिल्कुल, ये दो पोस्टकार्ड मेरे हाथ में एक ही जगह से और एक ही शख्स के लिखे हुए हैं। ये सबा अंजुम ने भेजे हैं, ग्राम श्रीकांतपुर, पोस्ट जलहरा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार से।
देखिए, हमें बहुत कम महिला श्रोता हमारी जो है चिट्ठियां लिखती हैं, इसलिए इन्होंने दो दो चिट्ठियां लिखी हैं, तो हमारे लिए बोनस है। क्या लिखती हैं?
बिल्कुल, उन्होंने पहली चिट्ठी में तो ये लिखा है कि मैं बीबीसी बार बार सुनती हूँ लेकिन पत्र बहुत कम लिख पाती हूँ, बीच बीच में प्रतिक्रिया भी लिखती हूँ लेकिन आप तक पहुँचते पहुँचते मेरा पत्र खामोश हो जाता है, वजह है देहाती श्रोता।
अरे नहीं, बिल्कुल देहाती श्रोता, हम खुद देहाती हैं और देहातों में रेडियो सुना जाता है, बीबीसी के कार्यक्रम सुने जाते हैं। ऐसा कतई नहीं हो सकता है सबा अंजुम जी कि आप देहात में रहती हैं, इस वजह से हम आपकी चिट्ठी शामिल नहीं करें, ऐसा तो असंभव है जी।
और साथ ही उन्होंने एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बीबीसी ही ऐसा स्टेशन है जिसे सुने बिना नींद नहीं आती, क्योंकि देहात में रेडियो ही एकमात्र माध्यम है और मैं अपने भाइयों को बैठा कर मम्मी पापा के साथ समाचार सुनती हूँ।
ये बहुत पुरानी परंपरा बीबीसी हिंदी रेडियो के श्रोताओं की है, पूरा परिवार, पूरा गांव साथ में बैठ करके पुराने जमाने से हमारे कार्यक्रम सुनता आ रहा है और ये सभा उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है।
नहीं, सभा ही नहीं, उन्हीं के इलाके से एक और शख्स हैं नसीम अंसारी, ये भी इस परंपरा को बढ़ाते हुए इन्होंने भी लिखा है।
ये उसी इलाका मतलब श्रीकांतपुर बक्सर बिहार से, हाँ,
वहीं से ये चिट्ठी आई है और इन्होंने तारीफ की है कार्यक्रम की। 29 तारीख को उन्होंने कहा कि एक आपका कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, महात्मा गांधी की शव यात्रा में शामिल लोग किस तरह कीचड़ में बैठ जाते हैं, इस कार्यक्रम की उन्होंने काफी सराहना की।
रेहान फजल की विवेचना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी की शव यात्रा का एक तरह से दृश्य उन्होंने उकेरा था। एक और पोस्टकार्ड है, इसके बाद फिर आप ईमेल देखेंगी।
हाँ, ये पोस्टकार्ड बहुत खास इसलिए है क्योंकि ये लिखा है एक 72 वर्षीय हमारे वृद्ध श्रोता हैं। उन्होंने इसको खास तौर से उन्होंने जिक्र किया कि 1964
से वो सुन रहे हैं, 50 साल से ज्यादा हो गए, 52 साल हो गए।
उन्होंने कहा 1964 से वो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और ये उन्होंने भेजा है चित्रकूट से और नाम है इनका बाबूलाल द्विवेदी।
क्या लिखते हैं द्विवेदी जी?
शिकायत है इनकी ये कि चित्रकूट क्षेत्र को आपने पूरी तरह से भुला दिया है, जहां पर स्वयं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीला दिखा चुके हैं।
अरे साहब, आप इतने बुजुर्ग हमारे श्रोता हैं, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। लेकिन अभी अगर कुछ दिन पहले आपने समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट सुनी होंगी, तो बुंदेलखंड के इलाके में बांदा और उस इलाके में सूखे की स्थिति पर हमने लगातार रिपोर्ट की थी। आपको अगली बार से शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन जितना संभव होता है उतना हम करते हैं। तृप्ति, मुझे लगता है इससे हमारे बुजुर्ग श्रोता थोड़ा संतुष्ट हुए होंगे। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ईमेल आपके पास हैं, पहला ईमेल कहाँ से आया है?
जी हाँ, ये ईमेल है गाँव मझगरा, पोस्ट चिरौली, भगवानपुर, सिवान, बिहार से। साजिद अली लिखते हैं, आमतौर पर आपको श्रोता आपके कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं लेकिन मैं 9वीं कक्षा की छात्रा वाग्नी जोशी की कविता की तारीफ करूंगा, वाकई उनकी कविता बहुत अच्छी थी और इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया।
वाग्नी जोशी ने 9वीं कक्षा की छात्रा है, नैनीताल से शायद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी और अपनी कविता लिखी थी, इनको पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद।
दूसरा ईमेल आया है बैंगलोर से रोहित भूषण का, ये लिखते हैं कि बीबीसी मेरा मित्र है और मित्रों के मध्य कान उमेटने और टांग खींचने का चलन स्वाभाविक होता है। मेरा ये पत्र इसी संदर्भ में है, वर्तमान में मैं बैंगलोर में एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूँ पर रेहान फजल, जुबेर अहमद, राजेश जोशी जी, आपका नाम भी लिखा है, वसतुल्लाह खान को आज भी सुनता हूँ और 20-25 वर्षों से अपनी इस दोस्ती पर उन्होंने कहा हमें नाज है, यकीन है आप तवज्जो देंगे।
बिल्कुल, देखिए आप वहाँ बैठी हुई हैं, लगता है आपका ही कान उमेटने के लिए तैयार है।
अगली जो हमारे पास अगला ईमेल है उसमें आलोचना ही आलोचना है। अनिल शुक्ला लिखते हैं कि अगर आप देश की सबसे बुरी खबर सुनना चाहते हैं तो बीबीसी हिंदी सुने, जिसमें देश में हो रहे अच्छे कामों पर खबरों की कोई जगह नहीं होती। सरकार के बारे में आलोचनात्मक खबरें होती हैं और कन्हैया कुमार जो कह दें उसे खुशी से प्रसारित किया जाता है। अब बीबीसी हिंदी को पॉजिटिव खबरों की ओर ध्यान देना चाहिए।
इनका नाम क्या है?
अनिल शुक्ला।
अनिल शुक्ला ने पता नहीं कहां से ईमेल भेजा है, शायद इसमें जगह नहीं लिखी हुई है। मेरी गुजारिश यह है कि हमारे कार्यक्रमों को, तमाम कार्यक्रमों को थोड़ा गंभीरता से, थोड़ा गौर से अगर सुनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम सिर्फ कन्हैया कुमार की ही बात कर रहे हैं या सिर्फ किसी सरकार के आलोचक की ही बात कर रहे हैं। मैं बार बार अपने श्रोताओं से इस बात को कहता हूं और आज भी दोहराता हूं, समाज में जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको उसी तरह से प्रस्तुत करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ही पत्रकारिता है। मुझे लगता है कि अब इतना समय हो गया है कि हम अपने श्रोताओं से इजाज़त लें, तो चलते चलते पता बता देते हैं। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब नजर डालते हैं आज की खेल जगत की खबरों पर, जिसे लेकर आए हैं रजत चान्ना।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चान्ना। आईपीएल 9 में आज राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में पुणे का सामना आज दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ होगा, लेकिन ये मैच जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आज पुणे हारती है तो नॉकआउट में पहुंचने तक की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। दिल्ली डेयरडेविल्स ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वो फिलहाल 7 मैचों में 5 जीतकर अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। टूर्नामेंट में लगभग सभी टीमों को हराकर दिल्ली पहली बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली पुणे के खिलाफ खेलने जा रही है और मौजूदा परिस्थितियों में दिल्ली को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन ने बताया कि अगर पुणे को जीतना है तो उन्हें सही रणनीति बनानी होगी।
पुणे में अब तक वो केमिस्ट्री नजर नहीं आती है, वो एकजुट होना, वो तालमेल समझ में नहीं आ रहा है अब तक पुणे में आया है या नहीं आया और क्यों नहीं आया। और धोनी का खुद का फॉर्म भी थोड़ा सा हल्का रहा है, शायद वो एक दो ऑलराउंडर जो उनके पास पहले थे जैसे ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा उनको मिस कर रहे हैं। और ये भी कहना होगा कि उनके मेन स्ट्राइक बॉलर रविचंद्रन अश्विन कुछ खास नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं तो पुणे सुपर जायंट्स को राइज करना पड़ेगा, अब तक तो ऐसा लग रहा है कि राइज के बजाय वो बिल्कुल डाउन जा रही है।
उधर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक जल्दी ही सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। कुक अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों से महज 36 रन दूर है। उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 9,964 रन है और 36 रनों की दूरी कुक श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की पहली पारी में ही पूरी कर सकते हैं। ऐसा करते ही वो 10,000 रनों तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। कुक 10,000 रनों तक पहुंचने वाले 12वें खिलाड़ी बनेंगे और ऐसा करने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज भी। फिलहाल यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन ने साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 31 साल 10 महीने की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कुक 25 दिसंबर 2015 को 31 साल के हुए हैं और इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए उनके पास अक्टूबर तक का समय है। उधर टेनिस में नोवाक जोकोविच ने बोना कॉरिच को 6-2, 6-4 से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। जोकोविच ने 4 डबल फॉल्ट किए लेकिन शानदार रिटर्न के दम पर कॉरिच को हरा दिया और अब वो तीसरे दौर में रॉबर्टो बतिस्ता एगट से खेलेंगे।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ के दौरान पंडाल गिरने से 6 लोग मारे गए हैं जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच यह हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के छठे और आखिरी चरण में 25 सीटों पर 84.2% मतदान होने की खबर है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के प्रमुख अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील हार गए हैं। 72 वर्षीय मोतीर रहमान निजामी को यह सजा 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के दौरान युद्ध अपराधों के सिलसिले में सुनाई गई है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने पुष्टि की है कि वो अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। खबरें हैं कि राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगान से से उनके मतभेद हैं, हालांकि वो इससे इनकार करते हैं। पिछले एक साल के दौरान दुनिया भर में विभिन्न संकटों के दौरान 1,67,000 लोग मारे गए हैं। अफ्रीकी देश कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक रिहायशी इमारत गिरने के 6 दिन बाद मलबे से एक महिला को जीवित निकाला गया है। और इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आबिदी ने उस सैन्य यूनिट के कमांडर को बर्खास्त कर दिया है जिस पर बगदाद के बेहद सुरक्षा वाले ग्रीन जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये कार्रवाई पिछले दिनों ग्रीन जोन की सुरक्षा को भेद कर संसद में शिया प्रदर्शनकारियों के घुस आने के मामले में की गई है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने। आपसे हमारी अगली मुलाकात थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। तब तक दुनिया भर की खबरों के लिए आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, हमारा फेसबुक पन्ना और ट्विटर हैंडल देख सकते हैं। अपने सभी सहयोगियों के साथ अमरीश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।